Ik ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैपन गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी भी सच आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। भाई बाला जी श्री गुरु अंगद देव जी साहिब नू दस रहे इस सब बिरतांत जो भाई बाला जी ने अपने अखी देखिया ते उन्ना को सुन के फिर दूसरे पातशाह जी अपने शब्दों विच लिखवांदे पैड़े मुखे को गुरु साहब जी दे कौतक। हुण महाराज जी दे शरीरक आयु 9 वर्ष दी हो गई ते मेहता कालू ने सोचिया कि इसनू जनेऊ पहनाया जाए। जनेऊ तोती बननी टिक्का लाउना जनेऊ पाउना हाथ विच माला रखनी जां गल विच माला पा लैनी आम करके गल विच पाउंदे सन इत्यादिक काम इह पंडित और खत्रियां नूं ही पंडितां ने दस्सिया सी कि सिर्फ खत्रियां नूं और ब्राह्मणां नूं ही इह करन दी आग्या है। होर किसे जाति नूं रब दा नां लैणा जां रब दे गुण गाउणे इह आग्या ही नहीं सी। बहुत सख्त समां सी जिस समय महाराज जी होणा ने आप सचखंड चों आ के मेहर कीती क्योंकि ब्राह्मण उस वेले जगत का गुरु सी आत्मिक पक्षों ते राजसी पक्षों बाहरों आए लोग बहुत अत्याचार कर रहे सन मुगल पठान ते आत्मिक पक्षों ब्राह्मण अपनी मन आईया करदे ते सारे नूं दस दे कि असी तुहाडे गुरु हाँ। सो मैथा कालू जी हरदयाल पंडित पास गया ते पुछिया कि पुरोहित जी दसो केड़ा दिन शुभ रहेगा नानक नूं जनेऊ पहनाउणा है। पंडित ने देख विचार के कहा कि फलाना दिन शुभ है। उस दिन की तैयारी की गई सारे बेदियों को तलवंडी नगर में न्योंदा दिता गया क्योंकि बहुत वड्डी रस्म हुंदी सी जो खत्रिय ब्राह्मण दे हिस्से आई सी और जिन्ने भी ब्राह्मण सन तलवंडी विच उन्हें सारे नूं भी न्योंदा दिता गया ते क्योंकि मैथा जी राय बुलार दे वजीर सन ते इस करके होर भी जो वड्डे लोग सन नगर विच उन्हें सारे नूं बुलाया गया इस रस्म ते वेड़े विच गऊ दे गोबर दे लेप किया गया। पंडितां ने दस्या कि इस नाल धरती पवित्र हुंदी है। ते फिर एक जश्न मनाना सी, खुशी मनानी सी, ते वो मनाउन लई एक बकरा रिन्या गया। सारे मेहता कालू जी दे संबंधी आए दादके नानके नगर विचों, पंडित सारे होर पतवंते। पंडित हरदयाल जी ने कहा कि नानक जी का इशनान करा के उसनू नवे कपड़े पहना के लै आओ। महाराज जी उन्होंने इशनान किया, नवे कपड़े पहने, तो जिथे पंडित बैठा सी सारे दे विच उत्थे महाराज जी उन्होंने बुलाया गया। महाराज जी आके बैठ गए, सारे नमस्कार की, हाथ जोड़ के। पंडित ने जो जरूरी समग्री सी वो मंगवाई, ते वेदां दी विधि अनुसार जनेऊ पहनन दी रस्म शुरू की। वेद का पाठ करके महाराज जी उन्होंने गल च जनेऊ पाउन लगा। तो महाराज जी कहते, पुरोहित जी, ये जनेऊ जिहड़ा तुसी साडे गल पाउन लगे हो, ये पाउन नाल की वडियाई हुंदी है? ये पाउन नाल ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ? ਅਤੇ ਜੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਉਨਤਾਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾਨਕ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਂਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਰਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੌਂਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਚੌਂਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿਸਨੇ ਜਨੇਊ ਨਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਈਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਰਮ ਸਾਰੇ ਅਧਰਮੀ ਕਰੀਏ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਰੀਏ, ਦੁਸ਼ਟਪੁਣਾ ਕਰੀਏ, ਝੂਠ ਬੋਲੀਏ, ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਅਧਰਮ ਕੁਕਰਮ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਗਊ ਦੇ ਗੋਬਰ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁੱਚੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਰਿੰਨਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। कि जनेऊ पाउण नाल धर्म रह जाता है, पुराने जो भी कर्म करे उन्हां दा कोई मतलब नहीं रहिंदा फिर। ते ये जनेऊ नाल भी जाता है दरगाह विच भी, जिथे अपनी अगवाई भरे कि मैं इसकी रक्षा करता रहा हाँ, मैं इसका धर्म कायम रखिया है। हरदयाल पंडित कहते जी, नानक जी इतने नाल ते नहीं जा सकता, नाल ते कोई जनेऊ नहीं जा सकता। महाराज जी कहते हाँ जा सकता है नाल जनेऊ। कहते जी तो सारे प्राणी सारे ब्राह्मण, ब्राह्मण भी बहुत सारे जो अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं, ब्राह्मण तो भाव होता है जिसन ब्रह्म का ज्ञान है, वो आए हुए हैं तो महाराज जी के बचन सुन के सारे ही चकित हो गए, किसी को कोई जवाब नहीं आ रहा। तो महाराज जी कहते हाँ एक जनेऊ है, जे आप जनेऊ पहनी तो दरगाह भी नाल जाता। सारे बहुत उत्सुक हुए कि वो कहड़ा जनेऊ है। हरदयाल जी कहते जी सानू भी दसो वो कहड़ा जनेऊ है। तो महाराज जी कहते दया कपा संतोख सूत जत गंढी सत वट, एह जनेऊ जी कर है था पांडे कत, ना ए टुटे ना मल लगे ना एह जले न जाए, तन समान स्नान कर जो गल चले पाए। कहते पंडित जी जे आप एक कपाह दे सूत का जनेऊ ना बनाइए, दया की कपाह लईए तो संतोख का सूत वटीए। दया की कपाह संतोख का सूत, सत का वट चाड़िए, भाव अंदर दया ते संतोख धार के ते शब्द का जाप करिए, दया ते संतोख धार के फिर वाहिगुरु शब्द दा वट चाड़िए। जपजी साहब जी विच भी महाराज जी वचन करते तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। धर्म महाराज जी दस रहे कि दरगाह विच किस तरह जाता है। कहते कि तौल धर्म दया का पूत, दया धर्म की माँ है, जिसके अंदर दया नहीं है वह धर्मी हो नहीं सकता। जिसके अंदर दया नहीं है, दया तो भाव है दूसरों नाल प्रेम करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों का भला करना, दूसरों का ये दया। दया कपा संतोख सूत, ते उदे सूत बना के इस दया वाली कपा दा जत गंढी सत वट, वाहिगुरु शब्द दे नाल ओ उसनू वटना है सूत नू, ते फिर जत दी गंढ देनी है। जत तो भाव है कि सारिया इंद्रियां नू वस विच करके रखना है, रोक के रखना है। तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। कि दया धर्म की माँ है, तो दया विचों संतोख पैदा होता है। संतोख जिन्ना चिर नहीं है उन्ना चिर अपनी भज दौड़ खत्म नहीं हो सकती। सहज अवस्था आ ही नहीं सकती संतोख तो बिन। संतोख तो भाव है कि अंदर रज गया कि मेरे पास बहुत है। ये दुनियावी पदार्थ पाउण नाल नहीं अंदर रजता, संतोख आउण नाल रजता। सो कहिंदे कि दया ते संतोख अंदर तार के अंदर निर्मल इस तरह का बना के दया और संतोख वाला, फिर परमेश्वर दे नाम का वट देना है उस कपाह नूं, ते फिर जत की गंढ देनी है। जत की गंढ सारे इंद्रियां नूं वस विच करके रखना। ते कहिंदे जिहड़ा तुसीं जनेऊ पाउण लगे हो ये तो शरीर ते पैंदा है, शरीर ने इत्थे रह जाना है, जनेऊ ने भी इत्थे रह जाना है, पर जो असी ये जनेऊ दस्या है ये जनेऊ जी नूं पैंदा है। ये जनेऊ जी का है ही तो पांडे कत, ये जी नूं जनेऊ पैंदा है ते जी ने अगे जाना है ते ये जी दे नाल ये जनेऊ भी जाए। तेरा जनेऊ अगे नहीं जा सकता। जे तेरे पास ये जनेऊ है पंडित जी तो फिर मेरे पा दियो, क्योंकि जो तुसी पाउण लगे हो जनेऊ इन्हें टुट भी जाना है, पुराना होके इन्हू मैल भी लगनी है तन दी, इसने अग नाल जल भी जाना है, ये गुआच भी सकता है। तो जेड़ा असी दस्या है हमने जनेऊ ना ये टुटे ना मल लगे ना ये जले ना जाए जाए गुआच से, ये जी दे नाल रहिंदा है यार। तन सो मन स्नान का जो गल चले पाए, कि ओ मानस देहियां तन हन जिन्हां ने ये जनेऊ पहनया है जो असी बचन की। सारे सुन के हैरान हो गए। महाराज जी कहते जो तेरा कपाह का जनेऊ है ये ऐवें तुसी कपाह खराब कर रहे हो, इस नूं बचाओ कपड़े बनाउण दे काम आएगी, ये जनेऊ नहीं किसे काम आना, इस नूं बचा लो। जे तुसी वो जनेऊ पा सकते हो जेड़ा मेरी दरगाह विच काम आवे तो मैं पाउण लई तैयार हाँ, ते जे दुनिया नूं दिखाउण लई पाउणा है ते वो नहीं सानू चाहिदा। साडा दुनिया नाल दुनिया नूं खुश करन दा मुद्दा नहीं है, साडा परमेश्वर जी नूं प्रसन्न करन दा मुद्दा है। पंडित कहिंदा नानक जी ये जनेऊ असी नहीं थापिया ना असी बनाया है, ये तो आदि तो खत्री और ब्राह्मण पाउंदे आए हैं, रीत है खत्री और ब्राह्मणा की रीत है। ये सारे रिखियां ने ब्रह्मा विष्णु सनकादिक आदि सारे रिशियां ने भी ये जनेऊ पाया से। ते गुरु कोलों जनेऊ पा के पौना ते उस कोलों उपदेश लैन नाल धर्म विच चाहीदा है। सो ये तुहानू पौना चाहीदा है, मना नहीं करना चाहीदा। फिर महाराज जी कहिंदे चौकड़ मुल अनाया बह चौके पाया, सिखां कन्न चढ़ाइया गुरब्राह्मण थिया, वह मुआ वो चढ़ पाया वितगा गया। महाराज जी कहते तुसी कहते हो आदि तो यह रीत है, असं ये कहते हैं कि ते मनुखा ने बनाई हुई रीत है, परमेश्वर ने नहीं बनाई हुई। चौकड़ मुल अनाया तुसी चौक कौडियां दी कीमत दे के ये सूत लै आंदा है, ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੌਂਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸੂਤ ਵੱਟਿਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਚਾਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਆ ਕੇ ਚੌਂਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੀ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੌਂਕੜ ਮੁੱਲ ਅਨਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੂਤ, ਬਹਿ ਚੌਂਕੇ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਚੌਂਕੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੰਨ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੰਨ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗੁਰਬਾਹਮਣ ਥੀ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸ਼ਿਗਿਰਦ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਆ ਉਹ ਚੜ ਪਿਆ, ਬੇਤੱਗਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਜਨੇਊ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਸੜ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਦਫਨਾਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਰੀਤ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਰੀਤ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਔਰ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਕੁਸਰ ਮੁਸਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਲੜਕਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਪਾਹ ਦਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ ਸੂਤ ਅਤੇ ਬੱਕਰਾ ਰਿੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸੂਤ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ, ਲੱਖ ਯਾਰੀਆਂ, ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ, ਲੱਖ ਗਾਲ, ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ, ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ, ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ ਜੋ ਲੁੱਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਜੀ ਨਾਲ ਤੱਗ ਕਪਾਹੋਂ ਕੱਤੀਏ, ਬਾਹਮਣ ਵੱਟੇ ਆਏ, ਕੋਹ ਕੋਹ ਬੱਕਰਾ ਰਿੰਨ ਖਾਇਆ, ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾ ਦਿਓ ਪਾ ਦਿਓ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਏ, ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋਰ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਾਉਣਾ ਪਊ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਾਨਕ ਤੱਗ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਜੇ ਤੱਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਗਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਿਆ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਕਰਾ ਰਿੱਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਾਣੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਰਬੰਧੀ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਾ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਬੰਧੀ ਬੁਲਾਏ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਵਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਬੇਟੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਲਾ, ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਆ ਦੇਖ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਾ ਲਓ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਪਾ ਦਿਓ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ। ਪੰਡਿਤ ਡਰਦਾ ਡਰਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕਾਲੂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾ ਦੇ ਗਲ 'ਚ, ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਜਨੇਊ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਜਨੇਊ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠ ਦਾ ਜਨੇਊ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਰੀਤ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਆਜ਼ਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਤਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਏ ਮੰਨੀਏ ਮਿਸਰ ਜੀ, ਦੇਵਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲੇ। ਦੇਵਤਾ ਜੀ ਨਾ ਏ ਮੰਨੀਏ ਪਤ ਉਪਜੇ ਸਲਾਹੀ ਸੱਚ ਸੂਤ, ਨਾ ਏ ਮੰਨੀਏ ਭਾਵ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਰੱਖੀਏ, ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਏ ਮੰਨੀਏ, ਨਾ ਏ ਮੰਨੀਏ ਪਤ ਉਪਜੇ, ਫਿਰ ਪਤ ਆਪਣੀ ਰਹੂਗੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ। ਸਲਾਹੀ ਸੱਚ ਸੂਤ, ਅਤੇ ਸੂਤ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ, ਅਤੇ ਸੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਸੱਚ ਦਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਸਲੋਤਾ ਕਰਨੀ। ਨਾ ਏ ਮੰਨੀਏ ਪਤ ਉਪਜੈ ਸਲਾਹੀ ਸੱਚ ਸੂਤ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਲਾਉਣਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਲਾਉਣਾ ਭਾਵ ਵਾਹਿ ਵਾਹਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਇਹ ਸੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਦਰਗੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟ ਸਪੂਤ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੋ ਹੈ, ਦਰਗੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟ ਸਪੂਤ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਤਗ ਆ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਨੇਊ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੱਕਰਾ ਖਾਧਾ, ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ। दुनिया द ब्राह्मण गुरु सी उस वेले तो जो भी ब्राह्मण कहता वो सारे नू करना पैंदा सी ते ब्राह्मण नू पुछे तो बिना कोई पैर भी नहीं फुटदा सी इन्ना ज़्यादा मनुख मनुख दी ही स्लेवरी स्लेवरी गुलामी गुलामी कर इन्नी ज़्यादा आत्मक पक्षों किन्नी ज़्यादा गुलामी मनुख दी ही ते दूजे पास्यों राजसी पक्षों किन्नी ज़्यादा गुलामी उन्ना मुगलां दे सो इन्ना बुरा हाल सी कि इधरों पंडित दुनिया नू को रहे हैं उधरों मुगल को रहे हैं ते उस समय थे जदों सुनी ना टुकार उदो महाराज जी उन्होंने क्या सारे देवतिया कि कोई है जो दुनिया नू इस वेले कढ सके आप सोचिए जरा उस जमाने नू अज अपनी महाराज जी उन्होंने अपन सरदारियाँ बख्शियाँ कले कले नू सरदार बनाया कले कले नू ते उत्थे किस तरह की गुलामी सी ते सोचिए कि कुछ नहीं है नाम जपन नू नहीं है कोई ते एक ब्राह्मण नू तुसी गुरु मनना है उस ब्राह्मण नू आप कुछ नहीं पता है सिर्फ वेद पढ़ लए हैं नू कुछ कोई प्राणी भी पढ़ सकता है अंदर दा ज्ञान नहीं है ते उदो महाराज जी होना पुछया हो सारे नू वड्डियां वड्डियां देवतियां नू भी कोई है जो दुनिया नू इस वेले कढ सकता है इस भयानक दल दल विच ते एक धारणा आम पढ़ी जाती होंगी कि जदों सुनी ना पुकार किसी देव नू किसी देवते ते आना पिया आप बाबे आना पिया आप ये काम होर किसी को हो ही नहीं सकता सी अज पंडतां नू कोई पुछदा नहीं है तुसी देखो महाराज जी उन्हां दी बख्शिश ते उस वेले पंडित गुरु सी ते फिर दोवां गुलामियां हिंदुस्तान विचों दोवें गुलामियां लाईयां पंडितां दी गुलामी भी ते बाहरों आए मुगलां दी गुलामी ये दोवें काम करके फिर जोत गुरु ग्रंथ साहिब जी विच किड्डा वड्डा काम सी आपां किन्ने भागां वाले हाँ जरा बैठ के सोचिए कि आप उस जमाने विच आज वो जमाना हुंदा उस जमाने विच की पता होवांगे या नहीं जे आज जमाना वो होवे तो किन्ना भयानक जमाना है कि एक धागा पा लवे कोई तो वो जो मर्जी कर सकता है उसनूं लाइसेंस मिल गया है जनेऊ महाराज जी उन्होंने अंदर आके उतार दिता बाहर भी सारे नू पता है कि की होना है उस तो बाद ब्राह्मणा दी एकदम ऐस इंसीडेंट तो बाद ब्राह्मण अंदरों आप कमजोर हो गए उन्होंने अंदरों डर लगन लग पे क्योंकि किसी ने उन्होंने दस्या ही नहीं सी पहला कि तुसी की कर रहे हूँ उन्होंने किसी ने जगा वो जोत सब में जोत जोत है सोए तिस्ते चामिल सब में चामिल वो जोत आप आए आप आके ये परोपकार दया 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 तो सानू महाराज जी उन्होंने बारे ये धारणा फड़ी बहुत प्यारी लगती आप फड़ी सारे गुरु नानक साहब जी बारे ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ है भी सच, नानक उसी भी आदि सच, जुगाद सच है भी सच, नानक उसी भी सच। मैं कालू जी ने देखा कि नानक जी ना तो बांदे कोलों ही पढ़े ना मुला पास ही बहुते दिन बैठे ना हम जनेऊ ही पाया है। कोई काम नहीं करते, नेत्र बंद करके अंतर ध्यान होए रहिंदे हन। जे घर विच हन ते घर विच इस दशा विच, जे बाहर बैठे हन ते बाहर। फिक्र लग गया है, मैं तां कालू जी तनाट पुरशन इको एक बेटा है, ते सोचते हैं कि मैं भी दुखी हाँ, कि ये कोई कार करन जोगा नहीं, ते वो भी उदास रहता है। एक दिन शाम नू मेहता जी ने महाराज जी होना अपने पास बिठाया, बहुत प्यार किया, सिर ते हाथ फेरिया, ते कह के बेटा नानक तू मच्छा गईया चरा लिया कर, जदों तो तू जनेऊ पहनना नूं ना कीती है, तदों तो कई तरह दियां गल्लां नगर विच हुंदियां हन। कोई आखदा है नानक जी दी अकल हिल गई है, कोई कुछ आखदा है, क्योंकि दुनिया ने जो दारे बन्ने हुए हन, जिन्ना चिर कोई उन्हां दारिआं विच रहिंदा है उन्ना चिर दुनिया वाले उस नूं सलाहुंदे हन, ते जदों कोई उस दायरे तो बाहर हो जाता है तो वह दुनिया नूं पाउंदा नहीं, दुनिया उस नूं चला गिंदी है। ते मैथा जी कहिंदे तू मझां गाईआं चरा लिया कर, तेरा मन भी परचिया रहू। महाराज जी कहिंदे पिता जी जिस तरह तुसी आखोगे मैं उस तरह ही करूँगा, सुभा देखना महाराज जी ने मतलब किस तरह करना, वही है जो करना है, पर किसी का दिल भी नहीं था। अगली सुबह हुई, महाराज जी उन्होंने स्नान करा के नवे वस्त्र पहनाए, प्रशादा छका के मझां गाईआं अगे ला दित्तियां, नाल कुछ छकन नूं पल्ले बन्न दित्ता। महाराज जी पशुआं नूं बाहर लै गए। ये जनवरी 1480 की गल है, 11 साल की महाराज जी उन्होंने शरीरक आयु। सर्दियों के दिन हैं, एक जगह पर पशुओं को चरन ला दिता, तो आप चौंकड़ा मार के बैठ गए। कुछ चिर बैठे रहे, फिर थले चिट्टा कपड़ा बिछा के उस उपर लेट गए, ते अंतर ध्यान होए रहे। इस तरह काफी समय गुजर गया। पशुओं ने जो बहुत सोहने हरे भरे खेत सन कणक दे, एक खेत विच वड़ गए ते वो सारी कुछ कणक खा ली, कुछ मिध दित्ती ते मीह भी ताजा पिया होया सी। उन्होंने पैरों नाल जो ना खाधी गई वो सारी नष्ट हो गई। ते फिर रज के उसे खेत विच ही खलो के पशु उगाली करन लग पे। तो खेत दा मालिक आया, उसने देखिया कि उसका सारा खेत उजड़िया होया है। बहुत क्रोध आया, उच्ची उच्ची बोलन लग पिया। तो उसकी उच्ची आवाज सुन के महाराज जी उठ के बैठ गए ते काली काली जाके पशुओं वो खेत चो कढ़न लगी। जिमीदार बहुत बुरा भला बोलिया, कहन लगा तू पटवारी दा पुत है, सारे तेनू चला आखदे हन, तू मेरी ही फसल उजाड़नी सी। महाराज जी बहुत निम्रता च कहिंदे कि जी जो भी किसी के कर्मा च हुंदा है वो उसनू जरूर मिलना है, सब कुछ परमेश्वर जी दे हाथ विच है, तुसी घबराओ ना, तुहाडी खेती विच परमेश्वर जी बरकत पाउणगे, तुहाडे जो भागां विच है जरूर मिलेगा। पर वो इन्ने क्रोध विच सी उसनू कोई गल ना सुनी, होर बोलिया महाराज जी हुणा फिर कोई गल नहीं कही, एक बार ही ये वचन किया। फिर कहन लगा चल मेरे नाल राय बुलार खोल, उसनू दसदा हाँ जो कुछ तू किया है। महाराज जी चुप करके नाल तुर पे। राय बुलार पास दोवें आ पहुंचे। जिमीदार ने राय बुलार नूं दस्या जी कि इसने इसके पशुओं ने सारी मेरी फसल उजाड़ दी है, एक पूरा खेत। राय बुलार कहिंदा कि मैं कालू जी नूं बुलाओ। हुण तक राय बुलार नूं महाराज जी होणा बारे कुछ पता नहीं है, इन्ना ही सुनिया है कि उदास रहिंदा है, कोई काम नहीं करदा, पढ़ने भी नहीं पिया। मैं तो कालू जी आए, राय बुलार बहुत कठोरता विच बोलिया। मेहता जी ना कहिंदा कालू तैनू पता है कि तेरा पुत्र मस्ताना है, तो तू इस दे अगे पशु क्यों लाने सन, देख इस जिमीदार दा सारा खेत बिगाड़ दिता है। ते उस सारा जुर्माना पर जो भी इसका नुकसान होया है, नहीं तो ये बादशाह को जाके पुकार करूँ। महाराज जी कहते राय साहब ये खेत का बिल्कुल ही कुछ नहीं बिगड़िया, बिल्कुल ही एक पत्ता भी नहीं बिगड़िया। राय बुलार ने जो दो वक्रिया वक्रिया गल्ला सुनिया, जिमीदार पासों एक ते महाराज जी होर पासों दूसरी, तो उसनु आप नु शंका हो गया कि सच है। महाराज जी कहते तुसी अपने आदमी भेज के बेशक तसल्ली कर लो। राय बुलार ने अपने प्यादे भेजे, उन्होंने चार च फिर खेत दे फिर के देखे, किधरों एक पत्ता भी नहीं टुटा हुआ। किस खेत विच कोई किसी पशु दे खुर दा ना निशान नहीं। उन्हें प्यादियाँ ने जाके राय बुलार नू एक खबर दसी। तो जिमीदार कहंदा जी ये झूठ बोलते हैं, वो आप गया फिर देखन, जाके देखता है तो वही गल निकली जो प्यादियाँ ने दसी सी। फिर अपने आप नू झूठा महसूस करन लगा तो राय बुलार कोल मुड़ के ना गया। रात नू राय बुलार दे आदमी उसके घर पूछन आए तो उसने कहा जी कि खेत ठीक है। हुण वैसाख दे दिन आ गए हैं, मार्च का एंड अप्रैल का शुरू जो है। ते